SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारत में आज लोकसभा के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों और तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर आज ही चुनाव संपन्न हो जाएगा। अभी तक हुए 3 दौर के मतदान में 2019 की अपेक्षा गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह गर्मी और मतदाताओं में उदासीनता बताई जा रही है। इस बीच कई सामाजिक और पत्रकार संगठनों ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रत्येक चरण में मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए और प्रत्येक चरण के मतदान में मतदाताओं की सही संख्या और मतदान के प्रतिशत सहित संपूर्ण डेटा अगले दिन तक जारी किया जाए। एक संयुक्त पत्र में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन प्रेस कोर, प्रेस एसोसिएशन, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब और डेली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मतदान पूरा होने के बाद भी चुनाव आयोग द्वारा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं करने पर निराशा व्यक्त की है और कहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, जो शंका पैदा करता है। विपक्षी दलों ने भी इस बदलाव और ख़ास तौर पर कुछ दिनों बाद मत प्रतिशत के अप्रत्याशित रूप से बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आने से लोकसभा चुनाव में सियासी पारा भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल को चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी है। जेल से बाहर आने के अगले ही दिन शनिवार को श्री केजरीवाल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन कर और फिर दिल्ली के कई इलाकों में रैली कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 75 साल के बाद रिटायर होने की नीति के अनुसार अगर भाजपा की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही महीनों में अपना पद छोड़ देंगे, जिसे अमित शाह को सौंप दिया जाएगा।
मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे। ये
भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री केजरीवाल के बयान को निराधार बताया।
मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अमरीकी चुनावों की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच मुद्दों पर आधारित बहस के सुझाव को स्वीकार करते हुए श्री गांधी ने कहा है कि वे इसके लिए तैयार हैं।
मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री से, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे।
भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस सुझाव को लेकर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया।
तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बहस करने और किसी भी विषय के ऊपर जानकारी कितनी इस स्तर की है कि बहस की जा सके, ये भली बात समझा जा सकता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, अभी वो कुछ दिन पहले नहीं बोले थे, परसों नरसों, कि वो IIT में वो लोग बैठे रहते हैं, अपर कास्ट है, फलां कास्ट को कम मिलता है, अगर ये फलां कास्ट बैठ जाएगी तो उसके वो क्वेश्चन पूछेगे तो नंबर होंगे। उनसे पूछो भाई तुम्हारे पिताजी के दादाजी ने 5 IIT बनाई थी, एक जर्मनी के सहयोग से, एक ब्रिटेन के सहयोग से, एक अमेरिका के सहयोग से, एक रशिया के सहयोग से, इसमें दलित सवर्ण कहां से आ गया भाई?
बहस का यह सुझाव जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस अजीत पी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से आया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों और कांग्रेस को भ्रष्ट बताते हुए निशाना साधा।
टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस के शहजादे देश में सबकी संपत्ति की जांच करवाना चाहते हैं। वो आपकी संपत्ति की जांच करवाएंगे, आपकी कमाई, आपकी जमीन उन लोगों में बांटेंगे जो इंडी अलायंस के लिए वोट जिहाद करते हैं। ये लोग आपके बाद भी आपकी संपत्ति में से आधा हड़पने की बात कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे हमलों का जवाब कांग्रेस नेता, खास तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा, बखूबी दे रही हैं।
जिसके बड़े बड़े नेता इस देश के लिए शहीद हुए, इस देश को अपना धर्म माना, जिनका खून इस धरती में है, वो पार्टी कैसे धर्म की विरोधी बन गई? बस आपका स्वार्थ साधने के लिए आप कुछ भी बोल दो जनता को, जनता मान लेगी, ये सिलसिला हो गया है। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने इतना झूठ फैलाया है, इन्होंने इतना भ्रम फैलाया है, इतनी नफरत फैलाई है लोगों के बीच में कि ये 2 चुनाव के लिए सफल हो गए। 10 साल गवा दिए, एक आपकी नौकरी की बात नहीं करता, एक आपके लिए जो किसानों के लिए कोई स्कीम कुछ उनको मजबूत करने की बात नहीं करते, बस मंच पे आते हैं और अब तो फिजूल की बातें कि कांग्रेस पार्टी भैंस चुरा लेगी, कांग्रेस पार्टी गहने चुरा लेगी, एक्सरे की मशीन ले आएगी घर के अंदर, क्या फिजूल की बातें हैं, मजाक बना रखा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है, आपके भविष्य की जिम्मेदारी है, निभा नहीं पाए, हिम्मत नहीं है कि आपके सामने खड़े होकर अपने काम पे वोट मांगे।
तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।